आज की मुरली है 21 जून 65 की।
टुडेज मुरली इज ऑफ द 21 जून 65।
रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
द रिकॉर्ड प्लेड इज भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मीनिंग नो वन इज यूनिक लाइक भोलेनाथ।
भोलानाथ सदैव शिव ही को कहते हैं।
ओम शांति। इट इज शिव अलोन हु इज ऑलवेज कॉल्ड भोलानाथ।
भोलों का नाथ किसे कहा जाता है?
हु इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द इनोसेंट वंस।
वो सदा ही कल्याणकारी है, कोई भोलानाथ हो सकता है।
ओनली द वन हु इज एवर बेनिफिशियल कैन बी भोलानाथ।
अगर कभी कल्याणकारी है, कभी शिव है, कभी अशिव है, तो उसे भोलानाथ नहीं कहा जा सकता।
If someone is beneficial sometimes, if he is Shiv, meaning beneficial sometimes, and sometimes a Shiv, meaning not beneficial, then he cannot be called Bholanath.
Shiva Shankar ka bhed to achhi riti samjha hai.
You have understood the difference between Shiv and Shankar properly.
Kya bhed hai?
What is the difference?
Sharirik roop se bhed hai ya atmik roop se bhed hai?
Is there a difference physically or spiritually?
शिव और शंकर में आत्मा के हिसाब से भेद है या शरीर के हिसाब से भेद है, व्यक्तित्व के हिसाब से भेद है?
Is the difference between शिव and शंकर with respect to the soul or the body or the personality?
व्यक्तित्व के हिसाब से भेद है।
Student, the personality. Is the difference with respect to the personality?
Personality तो एक ही है।
The personality is definitely the same.
भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शिव शंकर personality से एक है, लेकिन आत्माएं दो अलग अलग है।
Also, in the path of bhakti, meaning devotion, it is said Shiva and Shankar are one with respect to the personality. But there are two separate souls.
शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वो तीसरा नेत्र कौन सा नेत्र कहा जाता है?
शंकर इज शोन विद अ थर्ड आई। व्हाट इज दैट थर्ड आई कॉल्ड?
शिव नेत्र।
शिव नेत्र मीनिंग शिवास आई।
वो शिव नेत्र हमारे तुम्हारी आंखों की तरह सीधा सीधा ऐसा नहीं होता है।
दैट शिव नेत्र इज नॉट हॉरिजॉन्टल लाइक योर एंड माई आईज।
कैसा होता है? नहीं, खड़ा हुआ।
How is it? A student said something. No, it is upright.
दिखाए ध्यान से। क्यों खड़ा हुआ दिखाते हैं?
Have you seen it carefully? A student, it is upright. Why is it shown upright?
क्योंकि वो सदैव ही 24 hours आत्मिक स्टेज में खड़ा रहता है।
It is because He always remains standing in the soul conscious stage for 24 hours.
कौन?
Who?
शिव या शंकर?
शिव और शंकर। Someone said शिव।
शिव नेत्र।
शिव नेत्र।
बाकी सभी देवताओं को अपने अपने नेत्र होते हैं।
All the rest of the deities have their own eyes.
ब्रह्मा को भी अपने नेत्र हैं, विष्णु को भी अपने नेत्र हैं।
ब्रह्मा has his own eyes. Vishnu also has his own eyes.
ऐसे ही शंकर को भी अपने नेत्र हैं।
Similarly, Shankar also has his own eyes.
लेकिन वो सदैव खड़े हुए नहीं।
But they are not always upright.
माने आत्मिक स्थिति में लगातार कोई खड़ा रह सके वो सदा काल कोई नहीं होता।
It means there is no one who can always remain standing in the soul conscious stage.
एक शिव नेत्र ही है।
इट इज ओनली द शिव नेत्र।
तो ये पहला भेद ये हुआ कि शिव आत्मिक स्टेज में रहने वाला है सदा काल।
सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस दैट शिव रिमेन्स इन द सोल कॉन्शियस स्टेज फॉर एवर।
इसलिए सदा शिव कहा जाता है।
दिस इज वाई ही इज कॉल्ड सदा शिव मीनिंग शिव फॉर एवर। शिव मीन्स बेनिफिशियल।
और जो भी देवताएं हैं वो सदा शिव नहीं हो सकते।
द रिमेनिंग डीटीज कैनॉट बी सदा शिव।
कुछ न कुछ भेद होगा.
There will be a difference to some extent.
लेकिन एक देवता ऐसा है जो पूरा तादाद में शिव के साथ स्थापन कर लेता है.
But there is one deity who achieves complete similarity with Shiv.
ऐसा पुरुषार्थ करता है.
He makes such पुरुषार्थ meaning spiritual effort.
पुरुषार्थ कौन सा है?
Which पुरुषार्थ is it?
देवताएं कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे?
What kind of पुरुषार्थ will the deities make?
अच्छा असुर कौन सा पुरुषार्थ करते होंगे?
अच्छा what kind of पुरुषार्थ will the demons make?
चाहे देवता हो चाहे असुर हो सबने एक परमात्मा को याद करने का ही पुरुषार्थ किया.
Whether it is deities or demons, everyone has made पुरुषार्थ to remember only the one supreme soul.
आत्मिक स्थिति में रहते हुए उस परमात्मा को सभी ने याद किया है.
Everyone has remembered that supreme soul while being in the soul conscious stage.
ये तपस्या तो सभी ने की है.
Everyone did this tapasya, meaning intense meditation.
तो ये जो तपस्या है उस तपस्या में एक मूर्ति 33 करोड़ देवताओं के बीच में सबसे तीखी जाती है.
One personality, meaning मूर्ति goes ahead in this tapasya from among the 330 million, meaning 33 crore deities.
कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति.
Which personality is it? It is the personality of Shankar.
इसलिए शिव और ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया.
That is why Shiv and Brahma are not combined.
शिव और विष्णु को मिला के एक नहीं कर दिया.
Shiv and Vishnu are not combined.
किसको मिला के एक कर दिया? शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया.
Who are combined? Shiv and Shankar are combined.
तो जरूर है शंकर जो ध्यान मग्न बैठा हुआ दिखाया जाता है चित्रों में वो चरित्र इस बात को साबित करता है वो चित्र को साबित करता है.
So certainly Shankar who is shown engrossed in meditation in the pictures, that character, that picture proves
कि तादात में स्थापन किया है.
That he has achieved the same nature or character.
शंकर ने शिव के साथ समानता धारण की.
शंकर बिकेम इक्वल टू शिव.
इसलिए शिव और शंकर को मिला दिया गया.
दैट इज वाई शिव एंड शंकर आर कम्बाइंड.
दुनिया प्रैक्टिकल स्वरूप को मानती है.
द वर्ल्ड बिलीव्स इन द प्रैक्टिकल फॉर्म.
सिर्फ कहने से सुनने से मानने वाली नहीं है.
इट इज नॉट गोइंग टू बिलीव जस्ट बाय नरेटिंग एंड लिसनिंग.
तो बताया शिव और शंकर का भेद तो अच्छी रीति समझा.
So it was said, you have understood the difference between Shiv and Shankar properly.
Shivling kaha jata hai.
It is said, Shivling, meaning the ling of Shiv. Ling, the symbolic representation of the male organ. In the path of bhakti, it represents the incorporeal form of Shiv.
Shankar ling, nahin kaha jata.
It is not said Shankar ling, meaning the ling of Shankar.
दूसरे देवता के साथ ऐसे नहीं कहा जाता ब्रह्मा लिंग विष्णु लिंग.
इट इज नॉट सेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर डीटीज लाइक ब्रह्मा लिंग विष्णु लिंग.
इसके लिए कहा जाता है शिवलिंग.
इट इज सेड फॉर होम. इट इज सेड शिवलिंग.
शंकर लिंग क्यों नहीं कहा जाता?
वाई इज इट नॉट कॉल्ड शंकर लिंग?
शंकर रात्रि क्यों नहीं कही जाती?
Why is it not said Shankar Ratri, meaning the night of Shankar?
Shivratri kyun kahi jati hai?
Why is it said Shivratri, meaning the night of Shiv?
Karan kya hai?
What is the reason?
Karan to hoga na.
There must be a reason, mustn't there?
Kyunki ling jo hai wo ek aisi indriya hai jo kaam vikar ki suchak hai.
It is because the ling is such an indriya which indicates the vice of lust. Indriya, literally organs, including karmendriya, meaning parts of the body used to perform actions, and gyanendriya, meaning sense organs.
और उस इंद्रिय के ऊपर एक ही सत्ता ऐसी है जो 33 करोड़ देवताओं को जीत पहनाती है.
And there is only one being that enables the 330 million deities to gain victory over that indriya,
वो कौन सी सत्ता है? शिव.
विच इज दैट बीइंग? शिव.
और उन जीत पाने वालों में पहला नंबर किसका है?
एंड हूज नंबर इज फर्स्ट अमंग दोज हू गेन विक्ट्री?
शंकर.
इट इज शंकर.
इसलिए शंकर को इतनी शक्ति दिखाई गई है.
दैट इज वाई शंकर इज शोन टू पजेस सो मच पावर.
कि सागर मंथन हुआ तो क्या निकला?
वॉट इमर्ज वेन द जर्निंग ऑफ द ओशन टुक प्लेस?
हाला हाला विष निकला.
डेडली पॉइजन इमर्ज.
विषय विकार मिटाओ.
इट इज सेड रिमूव अवर वाइसेस इजंट इट?
उस हाला हाला विष को उसने पी लिया.
ही ड्रैंक द डेडली पॉइजन.
और देवताओं में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे ग्लानी के विष को उस विषय विकार के विष को पी जाता.
नो अदर डीटी हैड सच पावर टू ड्रिंक दैट पॉइजन ऑफ डेफेमेशन द पॉइजन ऑफ वाइसेस.
और पीने के बाद भी अपनी सत्ता को अक्षुण्ण बना के रखता.
एंड कीप हिज अथॉरिटी कॉन्स्टेंट इवन आफ्टर ड्रिंकिंग द पॉइजन.
बड़े बड़े पुरुषार्थ करने वाले बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं सब डाउन होते चले गए.
देर हैव बीन ग्रेट तपस्वीज मीनिंग एसेटिक्स हु मेड ग्रेट पुरुषार्थ ऑल केप्ट गोइंग डाउन.
माया किसी को छोड़ती नहीं है.
माया डजंट स्पेयर एनी वन.
इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है.
इट इज सेड इंद्रिय जीते जगत जीत मीनिंग गेनिंग विक्ट्री ओवर द इंद्रिय इज टू गेन विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड.
नेपोलियन हो चाहे मुसोलिनी हो चाहे कोई भी हो.
वेदर इट इज नेपोलियन मुसोलिनी और हुएवर इट मे बी.
दुनिया का कितना भी इस हिस्ट्री का बड़े से बड़ा सम्राट क्यों न हो.
He may be the biggest emperor in history in the world.
उसने अगर अपनी इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ नहीं किया तो वो विश्व का विजय नहीं कर सकता.
If he has not made पुरुषार्थ to gain victory over his इंद्रिया he cannot gain victory over the world.
एक शंकर के लिए ये गाया हुआ है क्या?
It is praised only for one शंकर. What?
क्या?
विश्वनाथ.
विश्वनाथ मीनिंग द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड.
जिसकी यादगार में आज भी झंडारोहण करते हैं तो क्या गाते हैं?
एज हिज मेमोरियल वॉट डू दे सिंग एट द टाइम ऑफ होइस्टिंग द फ्लैग इवन टूडे?
क्या गाते हैं?
वॉट डू दे सिंग?
विश्व विजय करके दिखलावे.
विश्व विजय करके दिखलावे मीनिंग द ट्राई कलर फ्लैग विल गेन विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड.
झंडे में तीन कपड़े होते हैं.
There are three cloths in the flag.
ये भारत का ही झंडा है.
It is the flag of India alone.
जिसमें नीचे हरा रंग दिखाया जाता है.
In which the green color is shown below.
बीच में सफेद रंग दिखाया जाता है विष्णु की सात्विकता का सूचक.
The white color, the indication of Vishnu's purity, meaning सात्विकता, is shown in the middle. सात्विकता means सात्विक, purity, truth. जेन्युइन.
और ऊपर केसरिया रंग दिखाया जाता है क्रांति का सूचक.
एंड द सैफ्रन कलर विच रिप्रेजेंट्स द रेवोल्यूशन इज शोन अबव.
तो योग बल के आधार पर ऐसी समूची क्रांति की जाती है सारे विश्व में.
सो डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ योग सच टोटल रेवोल्यूशन इज ब्रॉट अबाउट इन द होल वर्ल्ड.
इस सारे विश्व की सत्ता उसे एक देवता के हाथ में आती है.
दैट द अथॉरिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड कम्स इन द हैंड्स ऑफ दैट वन डीटी.
बाकी कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय करके नहीं दिखलावेगा.
एज रिगार्ड्स द फ्लैग मेड ऑफ क्लॉथ इट विल नेवर गेन विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड.
जरूर कोई ऐसी तीन हस्तियां हुई हैं इस सृष्टि पर पहले कभी खासकर भारत में.
सर्टनली देर हैव बीन सच थ्री पर्सनैलिटीज इन दिस वर्ल्ड particularly in India at some time.
जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर योग बल से विजय प्राप्त की थी.
Who gained victory over the entire world through the power of योग.
तो बताया कि बच्चों ने शिव शंकर का भेद तो अच्छी रीति समझा.
So it was said The children have understood the difference between Shiv and Shankar well.
क्या भेद है?
What is the difference?
शंकर को राजयोगी के रूप में दिखाया जाता है.
Shankar is shown in the form of a Rajyogi, meaning the one who practices Rajyog.
क्या कहते हैं?
What is he called?
योगेश्वर. योगियों का ईश्वर है, कंट्रोलर.
योगेश्वर, ईश्वर मीनिंग गॉड ऑफ द योगीज, दे आर कंट्रोलर.
शिव के लिए ये नहीं कहते हैं, शिव उसमें जरूर प्रवेश करता है.
This is not said for Shiv. Shiv certainly enters him.
शिव ऐसा तत्व है, चैतन्य तत्व, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता.
Shiv is such a living element that never comes into the cycle of birth and death.
बाकी जितने भी देवताए हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं.
All the remaining deities come in the cycle of birth and death.
कोई कहे शंकर को तो नहीं कहा जाता है कि वो जन्म मरण के चक्र में आता है.
Someone may say, it is not said for Shankar that he comes in the cycle of birth and death.
वो बात वास्तव में एक रहस्य की है.
Actually, it is a secret.
समझने की बात है.
It is to be understood.
बाकी इस सृष्टि पर जो आया है साकार रूप में, पांच तत्वों का चोला धारण करके.
As for the rest, whoever has come in a corporeal form, taking a body made of the five elements in this world,
वो पांच तत्व तो एक बार सभी को छोड़ने पड़ते हैं.
Everyone has to leave the five elements once.
एक शिव तत्व ऐसा है जो न जन्म मरण के चक्र में आता है.
It is only the element Shiv that neither comes in the cycle of birth and death.
और न जन्म मरण के चक्र में किसी को डालता है जन्म देकर.
Nor makes anyone else come in the cycle of birth and death by giving birth to him.
बाकी जितने भी हैं असुर चाहे देवताएं, वो स्वयं जन्म मरण के चक्र में आते हैं और जो आने वाला होगा वो दूसरों को भी लाएगा.
The rest of the people, whether demons or deities, they themselves come in the cycle of birth and death. And the one who comes in the cycle will also bring others in it.
तो शिव तो ऊंचे से ऊंचे मूल वतन में रहने वाला है.
So, Shiv is the resident of the highest मूल वतन, meaning supreme abode.
अंग्रेज लोग उसको क्या कहते हैं?
What do the English people call it?
Supreme abode.
The supreme abode.
मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह मियां क्या करने वाला है?
What do the Muslims call it? Where does Allah Mia reside?
सातवें अर्श का रहने वाला है, सातवें आसमान का.
He lives in the seventh अर्श, the seventh sky.
अर्श में रहता है अल्लाह, फर्श में नहीं रहता.
Allah lives in अर्श, meaning the highest heaven. He doesn't live on फर्श, meaning land.
गीता में भी उसका वर्णन है, उस धाम का.
That abode has been described in the Gita as well.
क्या वर्णन है?
What is the description?
जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता वो मेरा परम धाम है.
My supreme abode is the place where the light of the sun, moon and stars does not reach.
जहाँ से आत्माएं जा करके फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आता.
After going there, the souls do not return to this world of death.
बोला है न तक भाषे सूर्यो, सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच सकता.
It has been said, नतद भासयते सूर्यो, sunlight cannot reach there.
न शशांको, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँच सकता.
न शशांको, moonlight cannot reach there.
तारागणों का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच सकता.
The light of the stars cannot reach there.
यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के आत्माएं वापस इस मृत्यु लोक में नहीं लौटती.
यद गत्वा न निवर्तन्ते, After going there, the souls do not return to this world of death.
अच्छा, आत्माएं अगर इस मृत्यु लोक में नहीं लौटेंगी.
अच्छा, if the souls don't return to this world of death,
तो ये सृष्टि तो खाली हो जाएगी.
It will become deserted.
नहीं, उस श्लोक का ये अर्थ है इस मृत्यु लोक में कली की दुनिया में वापस नहीं आती.
नो दैट श्लोक मीनिंग वर्स मीन्स द सोल्स डू नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड ऑफ डेथ द आयन एज वर्ल्ड.
कलयुग का अंत करने वाला है.
ही इज द वन हु ब्रिंग्स एन एंड टू द आयन एज.
कलह क्लेश का जो युग है तामसी युग उसको नष्ट करने वाला है.
ही इज द वन हु डिस्ट्रॉयज द एज ऑफ क्वारल एंड स्ट्राइफ द डिग्रेडेड एज.
कल्पांतकारी कहा जाता है.
ही इज कॉल्ड कल्पांतकारी मीनिंग द वन हु ब्रिंग्स एन एंड टू द साइकिल.
और नई सृष्टि की सृजन करने वाला है.
एंड ही इज द वन हु क्रिएट्स द न्यू वर्ल्ड.
वो है सतयुगी नई सृष्टि.
दैट इज द गोल्डन एज न्यू वर्ल्ड.
नया कल्प आरम्भ करता है पुराना कल्प खलास करता है.
ही बिगिन्स द न्यू कल्पा मीनिंग साइकिल एंड एंड्स द ओल्ड कल्पा.
कौन करता है? शिव.
हु डज दिस? शिव.
किसमें करता है?
थ्रू होम डज ही डू इट?
शंकर.
शंकर.
ही डज इट थ्रू शंकर.
तो शिव शंकर आत्मा अलग अलग है.
सो द सोल्स ऑफ शिव एंड शंकर आर सेपरेट.
वो चैतन्य शक्ति है आत्मा.
दैट लिविंग पावर इज द सोल.
उसके मुकाबले आज की दुनिया का जो विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं, वो उसे नाम देते हैं एटम. एटम.
इन कंपैरिजन टू इट द साइंटिस्ट्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड हु एनालाइज एलिमेंट्स गिव देम द नेम एटम. एटम.
क्या नाम देते हैं? एटम.
वॉट नेम डू दे गिव? एटम.
वो जड़ तत्व है.
दैट इज एन इनर्ट एलिमेंट.
वो जड़त्व का विश्लेषण करते हैं.
दे एनालाइज इनर्ट थिंग्स.
उसे उन्हें उस चैतन्य का पता नहीं है.
दे आर अनअवेयर ऑफ दैट लिविंग पावर.
तो एटम और आत्मा ये दो शक्तियां हैं.
सो एटम एंड आत्मा मीनिंग सोल आर द टू पावर्स.
एटम पांच तत्वों से संबंधित चीज है.
एटम इज अ थिंग रिलेटेड टू द फाइव एलिमेंट्स.
और आत्मा पांच तत्वों से बिल्कुल परे की चीज है.
एंड द सोल इज कम्प्लीटली बियॉन्ड द फाइव एलिमेंट्स.
आत्मा का कॉन्सेंट्रेशन करके करना सीख लिया तो बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो सकती है.
इफ समवन लर्न्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सोल ही कैन अटेन अ वेरी बिग पावर.
दोनों का रूप एक ही है.
द फॉर्म ऑफ बोथ इज द सेम.
एटम भी अणु है आत्मा भी अणु है.
एटम एज वेल एज आत्मा इज माइन्यूट.
गीता में भी कहा गया है अणुअणांशम अनुस्मरेत यः.
इन द गीता ऑल्सो इट हैज बीन सेड अणुअणियांशम अनुस्मरेत यः मीनिंग द सोल इज मोर माइन्यूट देन एन एटम.
योगी लोग जिसे अणु के रूप में स्मरण करते हैं.
द योगीज रिमेम्बर इट इन द फॉर्म ऑफ एन एटम.
वो चैतन्य अणु है चमकता हुआ अणु है प्रकृति के मध्य में है.
इट इज अ लिविंग एटम अ शाइनिंग एटम. इट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड.
इसलिए उसकी यादगार में टीका लगाते हैं बिंदी लगाते हैं.
दिस इज वाई अ टीका अ वर्मिलियन मार्क अ बिंदी अ डॉट इज अप्लाइड एज इट्स मेमोरियल.
वो बिंदी की रोशनी हमारी आंखों से निकल रही है.
द लाइट ऑफ दैट पॉइंट इज कमिंग आउट ऑफ अवर आईज.
वो अणु जब तक आंखों में है तो आंखों में रोशनी है.
एज लॉन्ग एज द पावर ऑफ दैट एटम इज इन द आईज देयर इज लाइट इन द आईज.
वो आत्मा रूपी अणु निकल जाता है तो आत्मा निकल जाने से आंखें पत्थर हो जाती है.
When that atom like soul goes out, then because of the soul going out, the eyes become like stones.
लेकिन हर एक अणु जैसे अलग अलग होता है ऐसे ही हर आत्मा अलग अलग है.
But just like every atom is separate, similarly every soul is separate.
मनुष्यों ने तो अनेक प्रकार की थ्योरी बना दी है.
Human beings have made many kinds of theories.
कहते हैं सब आत्माएं मिलकर एक ही आत्मा है.
They say all the souls together are one soul.
आत्मा सो परमात्मा.
A soul is equal to the supreme soul.
लेकिन ऐसी बात नहीं.
But it is not so.
हर आत्मा में अपनी अपनी शक्ति है, अपना अपना पार्ट भरा हुआ है।
एवरी सोल हैज इट्स ओन पावर, इट्स ओन पार्ट रिकॉर्डेड इन इट।
शिव की आत्मा में भी अपना पार्ट भरा हुआ है।
द सोल ऑफ शिव ऑल्सो हैज हिज ओन पार्ट रिकॉर्डेड इन हिम।
क्या पार्ट भरा हुआ है?
वॉट पार्ट इज रिकॉर्डेड इन हिम?
कि वो इस शक्ति पर 84 के चक्र में नहीं आता है।
दैट ही डज नॉट कम इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स इन दिस वर्ल्ड।
लेकिन जब कभी इस शक्ति पर आता है वो सब पारलोक से, ब्रह्मलोक से।
बट वेन एवर ही कम्स फ्रॉम दैट पारलोक मीनिंग द वर्ल्ड बियॉन्ड, ब्रह्मलोक मीनिंग द सुप्रीम वर्ल्ड टू दिस वर्ल्ड,
तो हम आत्माओं को इस सृष्टि के बंधन से छुड़ा कर वापस ले जाते हैं।
ही लिबरेट्स अस सोल्स फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ दिस वर्ल्ड एंड टेक्स अस बैक।
इस दुनिया के बंधन से छुड़ाने का काम है उसका।
हिज टास्क इज टू लिबरेट अस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ दिस वर्ल्ड,
जिसको कहते हैं मुक्ति,
विच इज कॉल्ड लिबरेशन, मुक्ति।
इसलिए कहा शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन का रहने वाला है।
दैट इज वाई इट वॉज सेड शिव इज अ रेजिडेंट ऑफ द हाइएस्ट अबोर्ड द सोल वर्ल्ड।
जो सबसे ऊंचा होगा वो सबसे ऊंचा काम करेगा।
द वन हु इज द हाइएस्ट विल परफॉर्म द हाइएस्ट टास्क।
ऊंचे से ऊंचा करतार कहा जाता है।
ही इज कॉल्ड द हाइएस्ट करतार मीनिंग द परफॉर्मर।
उसके मुकाबले,
इन कंपेरिजन टू हिम मीनिंग शिव,
शंकर है सूक्ष्म वतनवासी।
शंकर इज अ रेजिडेंट ऑफ द सटल वर्ल्ड।
कहाँ का?
वेयर डज ही रिसाइड?
वो मूल वतन का सदैव का रहने वाला नहीं है।
ही डज नॉट रिसाइड इन द सोल वर्ल्ड फॉर एवर।
सूक्ष्म वतन में भी 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची स्टेज है शंकर की।
ऑल्सो इन द सटल वर्ल्ड अमंग द 330 मिलियन डीटीज द हाइएस्ट स्टेज इज दैट ऑफ शंकर।
उनको परमपिता कैसे कह सकते?
हाउ कैन ही मीनिंग शंकर बी कॉल्ड द सुप्रीम फादर?
मन शंकर को परमपिता नहीं कह सकते।
इट मीन्स दैट शंकर कैनॉट बी कॉल्ड द सुप्रीम फादर।
जगत पिता कह सकते हैं।
ही कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ द वर्ल्ड मीनिंग जगत पिता।
क्या?
वॉट? समवन सेड जगत पिता।
जो दीता जागता जगत है उसका पिता हो सकता है, लेकिन परमपिता नहीं हो सकता।
ही कैन बी द फादर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड बट नॉट द सुप्रीम फादर।
अगर परमपिता होता फिर वो याद भी किसकी बैठता है?
इफ ही इज द सुप्रीम फादर देन इन हूज रिमेम्बरेंस डज ही सिट?
चित्रों में, मूर्तियों में, जितनी भी प्राचीन मूर्तियां मिल रही है उन सब में याद में बैठा हुआ दिखाया गया है ना?
इन द पिक्चर्स अमंग द आइडल्स अमंग वॉट एवर एंशियंट आइडल्स दैट हैव बीन फाउंड ही हैज बीन शोन टू बी सिटिंग इन रिमेम्बरेंस हैजंट ही?
तो किसको याद करता है?
सो होम डज ही रिमेम्बर?
जरूर वो अपने से भी कोई ऊंची शक्ति है जिसको याद करते हैं।
सर्टनली ही रिमेम्बर्स द पावर दैट इज हायर देन हिम।
तो शंकर को परम पिता नहीं कह सकते।
सो शंकर कैनॉट बी कॉल्ड द सुप्रीम फादर।
ऊंचते ऊंच रहने वाला है एक बाप।
द रेजिडेंट ऑफ द हाइएस्ट अबोर्ड इज द वन फादर।
कौन? शिव।
हु? शिव।
जितने भी बिंदु 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 आत्माएं हैं, चाहे मनुष्यों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे कीड़े मकोड़ों की हो, है सब ज्योति बिंदु आत्मा।
ऑल द पॉइंट लाइक सोल्स वेदर दे आर द सोल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स, ऑल आर पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स।
लेकिन उन सब का बाप जो परम पिता है वो सबसे ऊंचे रहने वाला।
बट द फादर ऑफ ऑल ऑफ देम द सुप्रीम फादर इज अ रेजिडेंट ऑफ द हाइएस्ट प्लेस।
माने ब्रह्मलोक में भी रहने की कैटेगरीज है।
इट मीन्स इवन इन ब्रह्मलोक देर आर कैटेगरीज ऑफ रेजिडेंट्स।
वो सबसे ऊंचे रहने वाला है।
ही इज द रेजिडेंट ऑफ द हाइएस्ट कैटेगरी।
फिर दूसरे तबके में ये तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर।
देन इन द नेक्स्ट कैटेगरी देर आर दीज थ्री डीटीज, ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर।
तो बाप ऊंचते ऊंच निराकार.
सो द फादर इज द हाइएस्ट इनकॉर्पोरियल वन.
शंकर है आकारी.
शंकर इज आकारी मीनिंग सटल.
और शिव है भोलानाथ.
एंड शिव इज भोलानाथ मीनिंग लॉर्ड ऑफ द इनोसेंट वंस.
क्या कहा?
व्हाट वाज सेड?
शिव भोलानाथ है लेकिन जब भक्ति मार्ग वाले भक्त गायन करते हैं तो क्या कहते हैं?
शिव इज डेफिनेटली भोलानाथ बट वेन द डिवोटीज ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति प्रेज हिम व्हाट डू दे से?
शिव के साथ किसको जोड़ देते?
हुम डू दे कम्बाइन विद शिव?
भोले भाले.
वो तो कहते हैं.
अ स्टूडेंट भोले भाले. यस दे डू से दैट.
लेकिन शिव भोले भाले शिव अकेले को नहीं कहते.
बट दे डोंट से भोले भाले जस्ट फॉर शिव. भोले मीनिंग सिंपल और इनोसेंट. भाले मीनिंग लिटरली स्पियर. द वन विद अ स्ट्रिक्ट नेचर.
क्या कहते हैं? शिव शंकर भोले भाले.
व्हाट डू दे से? दे से शिव शंकर भोले भाले.
तो भोले के साथ तो भाला क्यों जोड़ दिया?
सो व्हाई इज भाला एडेड टू भोला?
क्योंकि शिव की सोल है वो तो सदैव भोले का ही पार्ट बजाती है.
इट इज बिकॉज द सोल ऑफ शिव ऑलवेज प्लेस द पार्ट ऑफ भोला.
लेकिन शिव जिसमें प्रवेश करता है वो भोलों के लिए भोला है और भालों के लिए भाला है.
बट द वन इन होम शिव एंटर्स इज भोला फॉर द भोला एंड भाला फॉर द भाला.
कहते हैं कांटे से कांटा निकाला जाता है.
इट इज सेड दैट अ थॉर्न इज रिमूव्ड विद अ थॉर्न.
या
वॉट?
कांटा निकालने के लिए कोई फूल उपयोग नहीं किया जा सकता.
अ फ्लावर कैनॉट बी यूज्ड टू रिमूव द थॉर्न.
तो जो जैसा है उसको सुधारने के लिए थोड़े समय के लिए वैसा रूप धारण करना पड़े.
इन ऑर्डर टू रिफॉर्म समवन वन हैज टू टेक ऑन अ फॉर्म लाइक हिम फॉर सम टाइम.
चोर डकैतों को संभालने के लिए सुधारने के लिए भी CID पुलिस को थोड़े समय के लिए क्या बनना पड़ता है? चोर डकैत बनना पड़ता है. उनके साथ मिक्स होना पड़ता है.
What does the CID police have to become for some time in order to deal with the thieves and dacoits and to reform them? He has to become a thief and dacoit. He has to mix with them.
तो बताया.
So it was said.
वो बाप ऊंचे ऊंचे निराकार है शंकर आकारी.
That father is the highest incorporeal and Shankar is subtle.
शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर.
शिव इज भोलानाथ द ओशन ऑफ नॉलेज.
शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते.
शंकर कैन नॉट बी कॉल्ड द ओशन ऑफ नॉलेज.
क्या?
वॉट?
ज्ञान का सागर नहीं कह सकते.
वी कैन नॉट कॉल हिम द ओशन ऑफ नॉलेज.
तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भर रहे हैं.
यू चिल्ड्रन नो दैट शिव बाबा भोलानाथ हैज कम एंड इज फिलिंग अवर झोली मीनिंग बैग.
आदि मध्य अंत का राज बताए गए.
ही इज टेलिंग अस द सीक्रेट्स ऑफ द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड.
इस चीज का आदि मध्य.
बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ व्हाट?
इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत का राज्य कोई मनुष्य के जानने की चीज नहीं है.
द सीक्रेट ऑफ द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ दिस वर्ल्ड कैनॉट बी नोन टू अ ह्यूमन बींग.
मनुष्य अपने आप नहीं जान सकता.
अ ह्यूमन बींग कांट नो इट बाय हिमसेल्फ.
मनुष्य को जानकारी देने वाला एक शिव वो निराकार है जो जनमन के चक्र में नहीं आता.
द वन हु गिव्स नॉलेज टू ह्यूमन बींग्स इज शिव. द वन इनकॉर्पोरियल हु डज नॉट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ.
मनुष्य तो जनमन के चक्र में आता है.
द ह्यूमन बींग कम्स इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ.
जनमन के चक्र में आता है तो पूर्वजों की बातें भूल जाता है.
ही फॉरगेट्स द इंसिडेंट्स ऑफ हिज पास्ट बर्थ व्हेन ही कम्स इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ.
तो मनुष्य तो बंधन में बंधा हुआ है.
सो द ह्यूमन बींग इज बाउंड इन बॉन्डेजेस.
वो सत्य के आदि मध्य अंत को कैसे जान सकता?
हाउ कैन ही नो द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड?
रचयिता और रचना का राज बहुत सिंपल है जो बाप आकर बताते.
द सीक्रेट ऑफ द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन विच द फादर नरेट्स व्हेन ही कम्स इज वेरी सिंपल.
सिंपल कब होता है?
When is it simple?
जब बाप शिव आकर के बताते हैं तब बहुत सिंपल हो जाता है.
When the father Shiv comes and narrates it, it becomes very simple.
बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन सहज बातों को नहीं जान सकते.
Even the great saints and sages can't know these easy topics.
बड़े बड़े ऋषि मुनियों से ये पूछा जाए कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताओ.
If the great saints and sages are asked to narrate the secrets of the beginning, middle and end of this world,
तो कहेंगे बेअंत है, बेअंत है.
They will say it is eternal, never ending.
जबकि वह रजोगुणी नहीं जानते थे.
Those rajoguni souls didn't know it. Rajoguni, having the quality of rajas, meaning activity or passion.
Rishi muni to dwapar yug se hue.
Those saints and sages came from the copper age.
Satyugeta mein Ramakrishna jaise devataye the.
There were deities like Rama and Krishna in the golden and silver ages.
Dwapar yug se jab se dwait paida hua. Do do pur ban gaye.
When dualism began from the copper age, when two cities came into being,
do pur banenge to do do rajya bhi banenge.
If there are two cities, there will also be two kingdoms.
Do do rajya banenge to do do dharm bhi banenge.
If there are two kingdoms, there will be two religions as well.
To jab se dvait paida hua is srishti par, tab se rajogun ki shuruaat hui.
So from the time dualism began in this world, rajogun began.
Us rajogun guni shakti mein jo paida hone wale manushya hain woh hi jab nahi jante the srishti ke aadi madhyant ke raj ko, to aaj ke tamoguni shakti ke manushya kaise jaan sakte hain.
When the human beings who were born in that rajoguni world themselves didn't know the secret of the beginning, middle and end of the world, how can the human beings of today's tamoguni world know it? Tamoguni, having the quality of tamas, meaning ignorance, darkness.
Ab tum bachche baap ke sammukh baithe ho.
Now you children are sitting face to face with the father.
Kya? Kaun janenge?
What? Who will know about it?
Jo baap ke sammukh baithe hue bachche honge, wohi jaan sakte
hain. Only the children who are sitting face to face सन्मुख विद द फादर कैन नो इट.
सन्मुख बैठे हुए का भी अर्थ समझना पड़ता है.
वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिटिंग फेस टू फेस एज वेल.
सन्मुख कौन है और विमुख कौन है?
हु इज सन्मुख, हु इज विमुख, मीनिंग द वन हूज फेस इज टर्न्ड ऑपोजिट टू द फादर.
मान लो कोई सन्मुख बैठा हुआ है स्थूल रूप में शरीर से और अंदर से उसको विकल्प आ रही.
Suppose someone is physically sitting face to face with the father and negative thoughts are arising in his mind.
विपरीत संकल्प आ रहे हैं तो उसके सन्मुख कहा जाएगा कि विमुख कहा जाएगा?
He is having opposite thoughts. Then will he be called सन्मुख or विमुख?
तो विमुख हुआ.
Then he is विमुख.
तो बोला.
So it was said.
तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो.
You children are sitting face to face with the father.
जो अंदरूनी तरीके से बाहरी तरीके से सन्मुख होकर के बैठे हैं वो इन बातों को जान सकते हैं.
Those who are sitting face to face with the father, both internally and externally, can know these things.
बाप अमर कथा सुना रहे हैं.
The father is narrating the अमर कथा, meaning the story of immortality.
कौन सी कथा? अमर कथा.
Which story? The अमर कथा.
अमर किसको कहा जाता है?
Who is called Amar?
Amar माने?
Amar means
जो मरता नहीं है.
The one who never dies.
क्यों? इस सृष्टि पे ऐसा कौन है जो कभी मरता ही नहीं?
Why? Who in this world never dies?
शिव?
Someone said शिव. शिव?
शिव के जन्म लेने और मरने की बात नहीं, तो जब वो जन्म ही नहीं लेता.
It is not about शिव being born or dying. When he is not born at all,
गर्भ से जन्म नहीं लेता है तो मरेगा कैसे? उसकी तो बात ही नहीं.
When he is not born through a womb at all, how will he die? It is not about him at all.
माने जो भी देवता है 33 करोड़ हैं, जन्म लेने वाले हैं और मृत्यु को पाने वाले.
It means that all the 330 million deities have births and they die.
तो उनको अमर क्यों कह दिया शास्त्र में?
So why are they said to be immortal in the scriptures?
Shankar ko amar dev kyon keh diya?
Why has Shankar been called amar dev, meaning the immortal deity? समवन सेड नो वन सीज हिम डाइंग. यस,
जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनको जब शिव आकर के पुरुषार्थ कराता है.
When Shiv comes and enables all the 5-7 billion human souls to make Purusharth,
तो उनमें से एक ऐसा है जगत पिता.
There is one soul who plays the role of the जगत पिता,
जिसको शास्त्रों में जगतम पितरम बंदे कहा गया.
For whom it has been said in the scriptures, जगतम पितरम बंदे, meaning I bow to you, the father of the world.
उसको मरते हुए किसी ने नहीं देख पाया.
No one saw him dying.
इसलिए उसको अमर कहा जाता है.
That is why he is called immortal.
दूसरे अर्थ में अमर इसलिए कहा जाता है कि मनुष्यों की तो मौत आती ही आती है, चाहे वो इच्छा करे या न करे.
In another sense, he is said to be immortal because human beings definitely die, whether they wish it or not.
लेकिन देवताओं की मृत्यु जो है उनकी इच्छा के अनुकूल होती.
But the death of the deities is according to their wish.
क्या?
What?
जब वो संकल्प करेंगे तो मृत्यु होगी.
When they create a thought for it, they will die.
अगर संकल्प न करें तो मृत्यु उनके नजदीक नहीं आ सकती.
If they don't create a thought, death cannot come near them.
इसलिए उनको अमर कहा जाता है.
That is why they are called immortal.
तो अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुनाई रहे हैं.
So now, you children are sitting face to face with the father. The father is narrating the Amar Katha.
तो यहाँ संशय नहीं आना चाहिए.
So you should not have doubt here.
क्या?
What?
गीता में भी क्या कहा गया?
What has been said in the Gita as well?
संशय बुद्धि विनश्यति, निश्चय बुद्धि विजयते.
संशय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजयते. Meaning, those with a doubting intellect are destroyed. Those with a faithful intellect will become victorious.
कोई भी मनुष्य, वा ब्रह्मा, वा विष्णु, अथवा शंकर, वो हमको नहीं सुनाते.
No human being, Brahma, Vishnu or Shankar narrate the knowledge to us.
क्या?
What?
हम किसी देवताओं से ये नॉलेज नहीं सुनने वाले हैं.
We do not listen to this knowledge from any deity.
हम किससे सुनने वाले हैं?
From whom do we listen?
ऊंचते ऊंच जो परम पिता है, हम उससे ही नॉलेज सुनते हैं.
We listen to this knowledge from the Supreme Father, the highest.
मनुष्यों की तो नॉलेज हजारों वर्ष से चली चली आई शास्त्रों में.
In fact, the knowledge of the human beings has continued from thousands of years in the scriptures.
शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते कोई अमर नहीं बना.
No one became immortal by reading the scriptures.
एक परमात्मा बाप ही ऐसा है, परम पिता.
It is only the one supreme soul father, the supreme father,
जो गीता ज्ञान सुना करके नर को नारायण जैसा देवता बनाता है.
Who narrates the knowledge of the Gita and transforms a man into a deity like Narayan.
मनुष्य को देवता बनाना किसी मनुष्य की बस की बात नहीं हो सकती.
It cannot be within the power of a human being to transform a human being into a deity.
भोलानाथ शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है.
भोलानाथ शिव बाबा says, I don't have my body.
क्या?
What?
उनका रोना क्या है?
What is his complaint?
उनका रोना है, मुझे अपना शरीर नहीं है, तो क्या करता हूँ?
His complaint is that he doesn't have his body. So what does he do?
गीता में भी लिखा है, प्रवेश तुम.
It is also written in the Gita, प्रवेश तुम.
मैं प्रवेश करने योग्य हूँ.
I am capable of entering.
मैं प्रवेश कर सकता हूँ.
I can enter someone.
जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं.
Just like ghosts and spirits enter someone.
उनको तो अपना सूक्ष्म शरीर होता है.
Actually, they have their subtle body.
लेकिन परमात्मा शिव को अपना सूक्ष्म शरीर भी नहीं, तो स्थूल शरीर भी नहीं, लेकिन प्रवेश कर सकता है.
द सुप्रीम सोल शिव नीदर हैज अ सटल बॉडी नॉर अ फिजिकल बॉडी बट ही कैन एंटर.
मैं निराकार हूँ.
आई एम इनकॉर्पोरियल.
क्या?
वॉट?
मेरी सदैव निराकारी स्टेज रहती है.
आई एम ऑलवेज इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज.
मैं देह के भान में आने वाला नहीं हूँ. ऐसे नहीं कि कर्म इंद्रियां मेरे को अपने बंधन में बांध लेंगी.
I do not become body conscious. It isn't that karmendriya will bind me in their bondage. Karmendriya, parts of the body used to perform actions.
ये साकार देह मेरी मन बुद्धि को अपने बंधन में नहीं बांध सकती.
This corporeal body cannot bind my mind and intellect in its bondage.
पूजा भी मुझे निराकार की ही होती है.
It is me, the incorporeal, who is worshipped as well.
क्या कहा?
What was said?
पूजा भी कब होती है?
When does worship take place?
जब मेरा निराकारी स्वरूप संसार में प्रत्यक्ष होता है तो पूजा होती है.
I am worshipped when my incorporeal form is revealed in the world.
कोई भी देवताओं की देवियों की पूजा का आधार क्या है?
What is the basis for the worship of any male or female deity?
जरूर उन्होंने प्रैक्टिस करके निराकारी स्टेज बनाई है.
Certainly, they practiced and attained the incorporeal stage.
आत्मिक स्टेज बनाई है.
They attained the soul conscious stage.
वो आत्मिक स्टेज के आधार पर उनकी पूजा होती.
They are worshipped because of that soul conscious stage.
जितनी जितनी निराकारी स्टेज बनेगी साकार इंद्रियों के भान से परे होते जाएंगे.
The more they attain the incorporeal stage, the more they go beyond the consciousness of the physical indriya.
तो उनकी इंद्रिया पूजी जाएंगी.
Their indriya will be worshipped.
अगर साकार इंद्रियों के भान से परे नहीं होते देवताएं.
If the deities don't go beyond the consciousness of the physical indriya,
तो उनकी पूजा नहीं हो सकती.
They can't be worshipped.
शिव जयंती भी होती है.
There is the Shiv Jayanti, meaning Shiva's birthday as well.
क्या? शिव जयंती भी होती है.
What? There is the Shiv Jayanti as well.
इसका मतलब?
What does it mean?
इसका मतलब क्या हुआ?
What does it mean?
जन्म जयंती किसकी होगी?
Who will have a birthday?
जो जन्म लेगा उसकी जयंती होगी.
The one who is born will have a birthday.
जन्म नहीं लेगा? तो जयंती कहाँ से होगी?
How will there be the jayanti of someone who isn't born?
जन्म किसके दिवस कैसे मनाया जाएगा?
How will his birthday be celebrated?
तो वो तो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं.
He isn't born through a womb at all.
तो जयंती कैसे?
So how does he have a jayanti?
किसी का जन्म होता है तो वो संसार में प्रत्यक्ष होता है.
When someone is born, he is revealed before the world.
प्रत्यक्ष होता है तो सबको पता चलता है कि बच्चे ने जन्म लिया.
When he is revealed, everyone comes to know that a child is born.
पैदाइश का मालूम पड़ जाता है.
They come to know about the birth.
ऐसे ही शिव निराकार जब इस सृष्टि पर आता है तो जब किसी तन में प्रवेश करता है तो किसी को पता नहीं चलता.
Similarly, when Shiv, the incorporeal, comes to this world, when he enters some body, no one knows.
क्या? कि उसने जन्म लिया.
What? That he is born.
कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी अगर ये कहते हैं कि हम शिव जयंती मनाते हैं.
If any Brahma Kumar Kumari says we celebrate Shiv Jayanti,
तो वो साबित करना पड़े. क्या?
Then they will have to prove it. What?
कि शिव जयंती मनाते हो तो बताओ, साबित करो किस दिन शिव ने जन्म लिया.
They should be asked, if you celebrate Shiv Jayanti, tell us, prove it, on which day Shiv was born.
अगर जन्म ही नहीं लिया.
If he isn't born at all.
वो जन्म दिन साबित नहीं कर सकते तो शिव जयंती कैसे मनाते हो.
If you are unable to prove his day of birth, how do you celebrate Shiv Jayanti?
जैसे दुनिया वाले मनाते चले आ रहे हैं परंपरा मुआफिक.
Just like the people of the world have been celebrating Shiv Jayanti like a tradition.
ऐसे ही तुम मनाते हो.
Similarly, you celebrate it.
तो असली शिव जयंती कब कहे?
So, when should we say it is the real Shiv Jayanti?
जब दुनिया वालों को ये पता लग जाए कि शिव इस धरती पर अमुक तन में आया हुआ.
It is when the people of the world come to know that Shiv has come to this world in this particular body.
क्या?
What?
सारी सृष्टि में ये ढिंढोरा पिट जाए.
They should be proclaimed in the entire world by drum beat.
जैसे बच्चे की पैदाइश होती है भारत में तो ढोल मजीरा बजाते.
Just like when a child is born in India, people play the drums and cymbals.
Yadgaren to yahan ki chali aa rahi hai na?
The memorials are of here, aren't they?
To Shiv bhi jab is sansar mein pratyaksh hota hai, to charon taraf gyan ke nagare bajna shuru hote hain.
So when Shiv also is revealed before the world, the drums of knowledge start beating everywhere.
Mujhe nirakar bap ki jayanti hoti hai.
There is the jayanti of me, the incorporeal father.
Sab atmao ki bhi jayanti hoti hai? Man?
There is the jayanti of all the souls as well. What does it mean?
Adh ki baat nahi batai.
He didn't speak about the limited.
Jo bhi 33 crore devatae hain, unki bhi asli jayanti tab hoti hai.
The true jayanti of all the 330 million deities also takes place.
Jabki unke apne 84 janmon mein se shesht se shesht janma ka jo part hai wo khul jata hai.
When the most elevated part of their 84 births is revealed.
Kaun si atma is shashti rupi chakra mein sabse shesht part bajane wali? Wo part uska khul jaye.
When the most elevated part of a soul in the world cycle is revealed,
to samjho uski jayanti.
It will be considered to be his jayanti.
To har atma ki bhi jayanti hoti hai behad mein.
So every soul has an unlimited jayanti.
Aur Shiv ki bhi jayanti hoti hai behad mein.
And Shiv has a jayanti in the unlimited as well.
Punarjanam mein aate sab zarur hai.
Everyone certainly has rebirth.
Wo to garbh se janam mein aate hain, maran mein aate hain, wo baat batai.
He spoke about those who have a birth through the womb and die.
Baap to janam maran rahit hai.
The father is free from birth and death.
Baap to garbh se janm leta nahi.
The father isn't born through a womb.
Aur uski duniyavi mrityu hoti bhi nahi.
And he doesn't die a worldly death either.
Wo Bholanath hai.
He is Bholanath.
Zarur aakar sabhi ki jholi bharenge.
He will certainly come and fill everyone's jholi.
Kaisa bhola hai?
How is he bhola?
Hai swayam bindu.
He himself is a point, meaning bindu.
Kya? Bindu hai, lekin sindhu hai.
What? He is a bindu, but he is an ocean, meaning sindhu.
Shastra mein uski mehma kar di hai.
He has been praised in the scriptures.
Mehma kis roop mein ki hai? Purnamidam, purnamadah, purnat, purnam, udachite.
How is he praised? Purnamidam, purnamadah, purnat, purnam, udachite.
Kya?
What?
Wo sadaiv purna hai.
He is always complete.
Kaisa purna hai?
How is he complete?
कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचेगा.
If you extract the whole from something complete, even then he will remain complete.
ऐसा wonderful पूर्ण है.
He is complete in such a wonderful way.
वो ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो ऐसा इस सृष्टि को ज्ञान सुनाता है.
When that point of light Shiv comes to this world, he narrates such knowledge to the world.
कि सारी सृष्टि ज्ञान से सराबोर हो जाती है.
That the entire world becomes drenched with knowledge.
Zarur aakar ke gyan dhan se sabki jholi bharega.
Certainly he will come and fill everyone's jholi bag with the wealth of knowledge.
Kaise jholi bharega?
How will he fill the jholi?
Jo bhi atma hai, chahe 84 janm lene wali ho, chahe kam janm lene wali ho, har atma ko jo atma rupi actors hai.
All the souls, whether they have 84 births or fewer births, every soul, the actor like souls,
jo sharir rupi chola dharan karke part bajane wale hain,
who take on the costume like body and play their part,
un sab ko apne apne part ka pata chalega.
They will get to know about their part.
Itna tak gyan sunayega. Kya?
He will narrate knowledge to that extent. What?
Aisa gyan is srishti par kisi ne nahi sunaya hoga.
No one will have narrated such knowledge in this world.
Kaisa?
What type of knowledge?
Ki hero part dhari se lekar ke 500 crore bhi antim atma tak.
Such that from the hero actor to the last soul, the 5 billionth soul,
jiska jaisa jaisa part hai, sabko apne anek janmon ke part ka pata chal jaye.
Everyone will come to know about their part of many births as it is.
अगर नहीं पता चलता तो सुप्रीम सोल बाप का कहना है कि वो एक्टर है बेवकूफ जिसको अपने पार्ट का ही पता नहीं।
इफ दे डू नॉट कम टू नो अबाउट इट द सुप्रीम सोल फादर सेज द एक्टर हु डजंट नो अबाउट हिज वेरी पार्ट इज फूलिश।
हम सब ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं हैं।
ऑल ऑफ अस आर पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स।
ज्योति बिंदु आत्माओं को पता होना चाहिए कि हमने 84 के चक्र में कैसे 84 चोले धारण किए।
द पॉइंट ऑफ लाइट सोल्स शुड नो हाउ दे टुक ऑन 84 बॉडीज इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स।
अगर नहीं पता,
इफ दे डोंट नो अबाउट इट,
इतना तक मनन चिंतन मंथन नहीं चला है तो हम बेवकूफ एक्टर हैं तब तक।
इफ दे आर थिंकिंग एंड चर्निंग हैजंट रीच्ड दैट लेवल देन अंटिल दे रीच दैट लेवल दे आर फूलिश एक्टर्स।
इतना विशाल ज्ञान का भंडार 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को देने वाला और वो भोलानाथ है।
द वन हु गिव्स सच वास्ट ट्रेजर ऑफ नॉलेज टू द 5 billion ह्यूमन सोल्स इज भोलानाथ।
क्या?
वॉट?
भोलों का नाथ है।
ही इज द लॉर्ड ऑफ द इनोसेंट पीपल।
नाथ माने स्वामी।
नाथ मीन्स लॉर्ड।
क्या?
वॉट?
बैल को नाथ डाली जाती है ना?
ऑक्सन आर कंट्रोल्ड विथ अ नोज रोप, आंट दे?
अपनी भक्ति मार्ग में स्त्री को क्या डाला जाती?
इन द पाथ ऑफ भक्ति वॉट इज अ वाइफ मेड टू वेयर?
नथनिया।
नथनिया मीनिंग नोज रिंग।
तो जैसे कि पुरुष नाथ लेकर,
सो इट मीन्स द हस्बैंड हैज कंट्रोल्ड द वाइफ,
तो वो है परम पुरुष।
सो ही इज परम पुरुष मीनिंग द सुप्रीम बीइंग।
क्या? हम सब भोले बच्चों का नाथ है।
वॉट? ही इज द लॉर्ड ऑफ अस इनोसेंट चिल्ड्रन।
वो नाथ तब साबित होगा जब हम उस भोलेनाथ को भोले के रूप में पहचान लें।
ही विल बी प्रूव टू बी द लॉर्ड व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट भोलेनाथ एज भोला।
हम अपनी चिकन बढ़ाते रहते हैं बुद्धि से।
वी कीप अप्लाइंग टैक्टिक्स विद अवर इंटेलेक्ट।
बाप कुछ डायरेक्शन देता रहता है, हम कुछ रास्ते पर चलते रहते हैं।
द फादर गिव्स सम डायरेक्शन एंड वी फॉलो सम डिफरेंट पाथ।
तो इसका मतलब हमने उस भोलेनाथ को पूरी रीति पहचाना नहीं।
सो इट मीन्स दैट वी हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड दैट भोलेनाथ कम्प्लीटली।
वो भोलानाथ है।
ही इज भोलानाथ।
जरूर आकर सभी की झोली भरेगी।
सर्टनली ही विल कम एंड फिल एवरीवन्स झोली।
ये बुद्धि रूपी झोली सबकी एक दिन भर जाएगी।
दिस झोली लाइक इंटेलेक्ट ऑफ एवरीवन विल बी फिल्ड वन डे।
जब पूरी झोली भर जाएगी एक एक की तो कितना आत्मा को मजा आएगा।
द सोल विल फील सो जॉयस व्हेन एवरीवन्स झोली बिकम्स फुल।
इतना मजा आएगा कि हर आत्मा अपने अपने पार्ट से संतुष्ट हो जाएगी।
इट विल फील सो जॉयस दैट एवरी सोल विल बी सेटिस्फाइड विथ इट्स पार्ट।
क्या?
वॉट?
कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा पार्ट खराब है।
नो वन विल से माई पार्ट इज बैड।
सबको संतुष्टि हो जाएगी।
एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड।
कैसे भरेगा वो झोली?
हाउ विल ही फिल द झोली?
ये तुम बच्चे जान सकते हो। क्या?
यू चिल्ड्रन कैन नो इट। वॉट?
अगर चाहो तो ये बात तुम बच्चे जान सकते हो कि वो आकर झोली कैसे भरेगा।
इफ यू विश यू चिल्ड्रन कैन नो हाउ ही विल फिल द झोली व्हेन ही कम्स।
अभी किसी की झोली पूरी भरी? भरी नहीं है।
नाउ नो वन्स झोली इज फिल्ड कम्प्लीटली।
अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं।
ही फिल्स द झोली विद द इम्पेरिशेबल जेम्स ऑफ नॉलेज।
कैसे ज्ञान रत्न?
वॉट काइंड ऑफ जेम्स ऑफ नॉलेज?
अविनाशी है।
दे आर इम्पेरिशेबल।
इन ज्ञान रत्नों का कभी विनाश होने वाला नहीं है।
दीज जेम्स ऑफ नॉलेज आर नेवर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। वॉट डज इट मीन?
क्या ये ज्ञान रत्न 84 जन्मों तक चलेंगे?
विल द जेम्स ऑफ नॉलेज लास्ट फॉर 84 बर्थ्स?
नहीं चलेंगे।
वोंट दे लास्ट?
नहीं।
नो।
मुरली में बोला तो है, ये ज्ञान रत्न ही तुम्हारे स्थूल रत्न बन जाएंगे।
इट इज सर्टनली सेड इन द मुरली दीज जेम्स ऑफ नॉलेज देमसेल्व्स विल बिकम योर फिजिकल जेम्स।
माना इस जन्म में जो आत्मा जितना जितना तीव्र ज्ञान धारण करेगी।
इट मीन्स द मोर नॉलेज अ सोल इम्बाइब्स इन दिस बर्थ।
जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है.
फॉर दैट इट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स अ नॉलेजेबल सोल इज एस्पेशली डियर टू मी.
इसको उस परमात्मा को
टू होम टू दैट सुप्रीम फादर
उसकी जो संपत्ति है वो ज्ञान रतन ही उसकी संपत्ति है.
हिज प्रॉपर्टी इज जस्ट द जेम्स ऑफ नॉलेज
सुप्रीम सोल की संपत्ति
द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम सोल
वो परमधाम से कोई दूसरी संपत्ति लेकर नहीं आता है.
ही डजंट ब्रिंग एनी अदर प्रॉपर्टी फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड
वो ज्ञान रत्नों की संपत्ति लेकर आता है.
ही ब्रिंग्स द प्रॉपर्टी ऑफ द जेम्स ऑफ नॉलेज
उन ज्ञान रत्नों की संपत्ति को जो जितना आत्मा वैल्यू देती है तो वैल्यू देने वाली आत्मा उतनी ही ज्यादा पावरफुल बनती है.
द मोर वैल्यू अ सोल गिव्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ दोज जेम्स ऑफ नॉलेज इट बिकम्स पावरफुल टू दैट एक्सटेंट.
तो बताया अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम झोली भरते हो.
सो इट वॉज सेड यू फिल योर झोली विद द इम्पेरिशेबल जेम्स ऑफ नॉलेज
ये ही नॉलेज है.
दिस इटसेल्फ इज द नॉलेज
ज्ञान सागर आए ज्ञान देते हैं.
द ओशन ऑफ नॉलेज कम्स एंड गिव्स द नॉलेज
गीता तो वो ही एक ही है.
इट इज द सेम गीता
परंतु संस्कृत श्लोक आदि तो है नहीं.
बट देर अरेंट द संस्कृत श्लोकस एटसेट्रा इन इट.
क्या कहा
वॉट वॉज सेड
ये यज्ञ की हिस्ट्री बता रही है.
द हिस्ट्री ऑफ द यज्ञ सेज
कि सन 36 में जब ये ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ था
दैट व्हेन दिस यज्ञ ऑफ नॉलेज बिगैन इन द ईयर 1936
तो वही पुरानी संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे अर्थ करके सुनाते थे.
द सेम ओल्ड संस्कृत गीता यूज्ड टू बी नरेटेड इट वॉज क्लैरिफाइड.
आदमी क्या करते थे
वॉट वॉज डन एट द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ
यही पुरानी संस्कृत की गीता इसके अर्थ करके सुनाते थे और ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे.
द क्लैरिफिकेशन ऑफ द सेम ओल्ड संस्कृत गीता वॉज गिवन एंड द वर्ड ओम वॉज प्रोनाउंस्ड.
तो जो आदमी हुआ वो अंत में भी होना है.
सो वॉट एवर हैपेंड इन द बिगिनिंग हैज टू हैपन इन द एंड टू.
माने आदि में भी वही संस्कृत की गीता थी और अंत में भी वही संस्कृत की गीता के श्लोक इस ज्ञान को पूरा सच्चा साबित करेंगे.
इट मीन्स इट वॉज द सेम संस्कृत गीता इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑल्सो द श्लोकस ऑफ द सेम संस्कृत गीता विल प्रूव दिस नॉलेज टू बी कम्प्लीटली ट्रू.
क्या कहा
वॉट वॉज सेड
गीता तो एक ही है परंतु संस्कृत श्लोक आदि तो अभी नहीं है जो बाप आकर सुनाते.
द गीता इज द सेम बट द संस्कृत श्लोक एटसेट्रा आर नॉट इन दैट गीता दैट द फादर नरेट्स आफ्टर कमिंग नाउ.
इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने भी आकर के अपने अपने धर्म स्थापन किए.
इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ऑल्सो केम एंड एस्टेब्लिश देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स.
गुरु नानक ने भी अपना आकर धर्म स्थापन किया.
गुरु नानक ऑल्सो केम एंड एस्टेब्लिश हिज रिलीजन.
मोहम्मद ने आकर के मुस्लिम धर्म स्थापन किया.
मोहम्मद केम एंड एस्टेब्लिश द मुस्लिम रिलीजन.
क्या उन्होंने हाथ में लेकर के कुरान पढ़ी थी.
Did he take the Quran in his hands and read it?
Christ ने क्या बाइबल पढ़ी थी. नहीं.
Did Christ read the Bible? No.
सभी धर्म पिताओं ने क्या किया.
What did all the religious fathers do?
मुख से डायरेक्ट आकर के बोला.
They came and spoke directly through their mouth.
तो परमात्मा भी सृष्टि पर आता है तो डायरेक्ट मुख से आकर बोलता है.
So, also when the Supreme Soul comes to this world, He speaks directly through his mouth.
क्या कोई ग्रंथ आदि रिफर नहीं करता है.
What? He does not refer to any scripture etcetera.
लेकिन जो कुछ भी बोलता है वो बातें वही है जो गीता में है.
But whatever he says are the same topics that are in the Gita.
गीता की 108 टीकाएं से ऊपर हो चुकी है.
There are more than 108 commentaries on the Gita now.
तिलक गीता गांधी गीता शंकराचार्य गीता माध्वाचार्य गीता.
द तिलक गीता द गांधी गीता द शंकराचार्य गीता द माध्वाचार्य गीता
वशिष्ठ गीता अष्टावक्र गीता.
द वशिष्ठ गीता द अष्टावक्र गीता.
लेकिन जो भी गीताएं हैं उनमें बातें ऐसी ऐसी आती हैं कि एक दूसरे का काट करने वाली.
But the things that come in all those Gita are such that they contradict each other.
So, कौन सी गीता सच्ची?
So, which Gita is true?
जरूर है. मनुष्य जो अर्थ करेगा.
Certainly, whatever a human being clarifies.
मनुष्य तो देवता भी नहीं है.
A human being is not even a deity.
मनुष्य मनुष्य है. देवता भी नहीं है.
Human beings are human. They are not even deities.
देवताएं ज्यादा पवित्र होते हैं या मनुष्य ज्यादा पवित्र होते हैं?
Are deities purer or are human beings purer?
देवताएं विकारी होते हैं या मनुष्य विकारी होते हैं?
Are deities vicious or are human beings vicious?
मनुष्य विकारी होते हैं.
Human beings are vicious.
तो मनुष्यों के लिखे हुए वेद शास्त्र भी झूठे हो सकते हैं.
So, the Vedas and scriptures written by the human beings can also be false.
Unki tikaye bhi jhooti ho sakti.
Their commentaries can also be false.
Isliye ye gayan bhi hai. Kaise samjhe kavi? Kaise samjhe ravi?
That is why there is also a saying. Kaise samjhe kavi? Kaise samjhe ravi?
Ya to kavi apni kavita ka arth samajh sakta hai ya to gyan surya parmatma hi srishti par utar aaye. तो उन कविताओं का सही अर्थ बता सकता है.
Either a poet can understand the meaning of his poem, or the son of knowledge, the supreme soul, himself can narrate the true meaning of those poems if he comes to this world.
तो गीता तो वही है.
So it is the same Gita.
क्या बोला?
What was said?
गीता वही है, लेकिन अभी जो कुछ परमात्मा बाप आकर सुनाते हैं.
It is the same Gita. But whatever the Supreme Soul Father narrates after coming now,
वो संस्कृत के श्लोकों में नहीं सुनाते.
He doesn't narrate it as the Sanskrit shloka.
आज की दुनिया में कहीं देखा कोई गांव, कोई शहर?
Have you seen any village, any city in today's world?
कोई देश ऐसा सुना जहाँ संस्कृत बोली जाती हो, मातृभाषा संस्कृत हो?
Have you heard about any country where the Sanskrit is spoken, where the mother tongue is Sanskrit?
है? नहीं.
Is there any? No.
माने संस्कृत तो संस्कृत का अर्थ यह है सुधारी हुई.
It means the Sanskrit. Sanskrit itself means reformed.
उसको set किया गया है.
It has been set.
वास्तव में वो भाषा बोली नहीं जाती रही कभी.
Actually, that language was never spoken.
प्राकृत पाली आदि भाषाएं पुरानी भाषाएं बोली जाती रही है.
Ancient languages like Prakrit, Pali, etc. were spoken.
संस्कृत भाषा में जो श्लोक लिखे गए हैं, वो श्लोक सिर्फ विद्वानों की चीज रही है.
The shloka written in Sanskrit have been something known only to the scholars.
वो श्लोक परमात्मा बाप आकर नहीं सुनाता.
The Supreme Soul Father does not narrate those shlokas when he comes.
वो तो असली भाव आकर के समझाता है.
He comes and explains the real meaning.
बोली माताएं संस्कृत आदि से क्या समझेगी?
What would the innocent mothers understand from the teachings in Sanskrit, etc.?
क्या?
What?
बोली बोली माताएं हैं, वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं. उनके सामने परमात्मा बाप आकर के संस्कृत सुनाने लगे, संस्कृत के श्लोक सुनाने लगे.
There are innocent mothers. They are not so educated. If the Supreme Soul Father comes before them and starts narrating in Sanskrit, the Sanskrit shlokas,
तो वो तो बेचारी कुछ नहीं समझेंगी.
Then the poor ones will not understand anything.
तो ये विद्युता आकर के परमात्मा सुप्रीम सोल आकर नहीं झाड़ता.
So, the Supreme Soul does not display his scholarship when he comes.
वो तो सीधे सीधे शब्दों में आकर के ज्ञान को सुनाता है, जो गीता ज्ञान दिया हुआ है. संस्कृत गीता में
ही कम्स एंड नरेट्स द नॉलेज दैट इज इन द संस्कृत गीता इन सिंपल वर्ड्स.
गीता वही है, लेकिन उसके अर्थों में अंतर पड़ जाता है.
इट इज द सेम गीता बट अ डिफरेंस अराइजेस इन इट्स मीनिंग्स.
तो इन माताओं के लिए भोलानाथ बाबा आते.
सो भोलानाथ बाबा कम्स फॉर दीज मदर्स.
ये माताएं बेचारियां तो घर के काम आदि में रहती हैं.
These poor mothers remain engaged in the household chores, etc.
ये तो अभी फैशन पड़ा है, जो नौकरी आदि के लिए निकल पड़ी है.
It is a fashion now that they have come out for jobs.
ये फैशन भी कहाँ से आया कि माताएं बाहर जाकर की नौकरी करती हैं?
From where did this fashion of mothers going out for jobs come?
विदेशों से ये फैशन आया है.
This fashion has come from foreign countries.
तो बाबा आप बच्चों को ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं?
So, Baba is teaching the highest knowledge to you children.
जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ते थे उनको पहले पहले कलश आकर के रखते.
He first of all comes and places the pot on those who didn't used to study anything.
जो शास्त्रों में गायन है क्या?
It is mentioned in the scriptures. What?
शास्त्रों में क्या गायन है?
What is mentioned in the scriptures?
ज्ञान का कलश किसको दिया?
माता को दिया.
Who was given the pot of knowledge? A student. It was given to mothers.
कौन सी माता को दिया?
जगदम्बा.
To which mother did he give it? The student, Jagadamba.
जगदम्बा को भी दिया और लक्ष्मी को भी दिया.
He gave it to Jagadamba. He also gave it to Lakshmi.
सागर मंथन हुए.
The churning of the ocean took place.
देवताओं और असुरों ने जो सागर मंथन किया.
The churning of the ocean, which the deities and the demons did.
ज्ञान सागर का जो मंथन किया.
They did the churning of the ocean of knowledge.
उस मंथन से जो रतन निकले उन रतनों में विशेष कलश निकला.
A pot came out, especially among the jewels that emerged from that churning.
उस ज्ञान कलश का जो भार है वो किसके ऊपर दिया?
Who was given the responsibility of that pot of knowledge?
लक्ष्मी जगदम्बा के ऊपर दिया.
It was given to Lakshmi, Jagadamba.
तो बोला तो बाबा आप बच्चों को ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं?
So it was said, Baba is teaching the highest knowledge to you children.
तुम्हारे ऊपर कलश रखते हैं पढ़ाई का.
He places the pot of knowledge on you.
यू तो भक्तियाँ सीताएं सब हैं.
In a way, all are female devotees, meaning भक्तियाँ सीता.
राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने के लिए.
Ram has come to liberate them from the Lanka of Ravan. Lanka. Lanka is the land of Ravan.
दुखों से मुक्त करने के लिए आए थे.
He has come to liberate them from sorrow.
फिर जरूर बाप के घर ही जाएंगे.
Then certainly they will go just to the father's house.
और बाप के साथ ही जाएंगे.
And they will go along with the father himself.
और कहाँ जाएंगे?
Where else will they go?
याद भी घर को करते हैं हम दुख से मुक्ति पावे.
It is the home that they remember. They think we should be liberated from sorrow.
बच्चे जानते हैं बीच में किसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी.
Children know that no one will attain liberation in the middle.
क्या?
What?
जैसे मनुष्य गुरु कहते चले आए.
Just like the human gurus have been saying.
कि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान सुनाया उसे निर्वाण को प्राप्त किया.
That महात्मा बुद्ध attained nirvana, meaning liberation through the knowledge he narrated.
तो चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग हो किसी युग में कोई भी मुक्ति को नहीं प्राप्त करता.
Whether it is the golden age, the silver age, the copper age or the iron age, no one attains liberation in any age.
कोई निर्वाण धाम वापस नहीं जा सकता.
No one can return to the soul world.
अगर कोई निर्वाण धाम वापस गए होते तो दुनिया की आबादी कम हुई होती या बढ़ती?
Had anyone returned to the soul world, then would the population of the world have decreased or increased?
दुनिया की आबादी तो कम हो जानी चाहिए लेकिन नहीं.
The population of the world should decrease. But no.
इस सृष्टि पर जो भी आया
Whoever came to this world,
वो अज्ञानता में जन्म मरण के चक्र में आकर के नीचे ही गिरता चला गया.
He entered the cycle of birth and death because of ignorance and kept falling.
Mentality नीचे गिरती चली जाती है.
The mentality keeps degrading.
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते चले जाते.
Lust, anger, greed, attachment and ego keep increasing.
बुद्धि विकृत होती जाती है.
The intellect keeps becoming vicious.
कलयुग के अंत में जब पूरी ही बुद्धि विकृत हो जाती है.
When the intellect becomes completely vicious at the end of the iron age.
मनुष्य की बुद्धि कौड़ी मिसल हो जाती है.
The intellect of the human being becomes like a shell.
कौड़ी की शेप के मिसल बुद्धि ऐसी बन जाती है जिसमें और कुछ याद नहीं आता सिवाय विकृतियों की.
द इंटेलेक्ट बिकम्स जस्ट लाइक द शेप ऑफ अ शेल. इट बिकम्स सच दैट नथिंग अदर देन वॉइसेस कम्स टू द इंटेलेक्ट.
तब परमात्मा आकर के वो ज्ञान देता है.
देन द सुप्रीम सोल कम्स एंड गिव्स सच नॉलेज
जो उस कौड़ी जैसी बुद्धि को हीरे जैसा बनाता है.
दैट ही ट्रांसफॉर्म्स द शेल लाइक इंटेलेक्ट इनटू अ डायमंड लाइक इंटेलेक्ट.
तो हीरे जैसा बनाने वाला
सो द वन हू मेक्स अस डायमंड लाइक
कौड़ी लेने वाला
द वन हू टेक्स शेल्स
और क्या देने वाला
एंड व्हाट डज ही गिव
हीरा जैसा देने वाला वो एक भोलानाथ इस सृष्टि पर आया हुआ है.
ही इज द वन हू गिव्स अ डायमंड लाइक इंटेलेक्ट. दैट वन भोलानाथ हैज कम टू दिस वर्ल्ड.
सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है.
ही ट्रांसफॉर्म्स एवरी वन फ्रॉम तमो प्रधान टू सतो प्रधान. तमो प्रधान मीनिंग डोमिनेटेड बाई डार्कनेस और इग्नोरेंस. सतो प्रधान मीनिंग कंसिस्टिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुडनेस एंड प्योरिटी.
मुख्य जो फाउंडेशन थुर है इस सृष्टि का वो सर जाता है.
द मेन फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड द ट्रंक डीकेज.
गीता में भी सृष्टि वृक्ष बताया हुआ है.
द वर्ल्ड ट्री इज मेंशन्ड इन द गीता एज वेल.
क्या ये सृष्टि वृक्ष ऐसा है जिसकी मूल जड़ सड़ गई है देवी देवता सनातन धर्म की.
वॉट दिस वर्ल्ड ट्री इज सच दैट इट्स मेन रूट द रूट ऑफ द एंशियंट डीटी रिलीजन हैज डीकेड.
बाकी सब धर्म खड़े हुए हैं.
ऑल द रिमेनिंग रिलीजन्स एग्जिस्ट.
सनातन धर्म उसमें सरांद लग गई.
द एंशियंट डीटी रिलीजन हैज डीकेड.
तो बोला वो धर्म अब प्राय लोप हो चुका है.
सो इट वॉज सेड दैट रिलीजन हैज ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड नाउ.
जो सनातन धर्म की परमात्मा बाप ने आकर के 5000 वर्ष पहले भी गीता ज्ञान सुनाकर सनातन धर्म की स्थापना की थी वो प्राय लोप हो चुका है.
द एंशियंट डीटी रिलीजन विच द सुप्रीम सोल फादर एस्टेब्लिश्ड 5000 years अगो ऑल्सो By narrating the knowledge of the Gita has almost disappeared.
बाकी प्राय कुछ चित्र आदि देवताओं के आकर बचे हैं.
As for the rest, some pictures etc. of the deities are remaining.
लक्ष्मी नारायण के चित्र, राम सीता के चित्र, उनके चित्र भी अभी तक हैं.
The pictures of लक्ष्मी नारायण, the pictures of राम सीता, so their pictures exist even now.
बच्चों को इस पर समझाना है.
द चिल्ड्रन मस्ट एक्सप्लेन दिस.
क्या समझाना है?
वॉट शुड दे एक्सप्लेन?
कि त्रेता युग में राम सीता का राज्य था.
देर वॉज द किंगडम ऑफ राम सीता इन द सिल्वर एज.
सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था.
देर वॉज द किंगडम ऑफ लक्ष्मी नारायण इन द गोल्डन एज.
सतयुग होता है 16 कला संपूर्ण.
द गोल्डन एज इज कम्प्लीट विद 16 celestial degrees.
तो नारायण भी 16 कला संपूर्ण थे.
So, Narayan was also complete with 16 celestial degrees.
E Krishna Narayan Vasudeva.
People say, Hey Krishna Narayan Vasudeva.
Krishna ko, Narayan ko, Vasudeva ko 16 kala sampurna kaha jata hai.
Krishna, Narayan, Vasudeva are called the ones complete with 16 celestial degrees.
Satyuga mein janma lete lete atma ki shakti chheen hoti hai, to treta mein 2 kalaen kam ho jati hai.
When the power of the soul diminishes by having rebirths in the golden age, there are 2 celestial degrees less in the silver age.
Atma ki shakti chhin ho jati.
The power of the soul diminishes.
Jo samajhte hain Lakshmi Narayan principle se.
They understand that Lakshmi Narayan were prince princess first.
Phir Maharaja Maharani bane.
Then they became Maharaja Maharani, meaning emperor empress.
जरूर पहले बच्चे के रूप में जन्म लिया होगा.
सर्टनली दे विल हैव बीन बोर्न एज चिल्ड्रन फर्स्ट.
फिर बड़े हुए होंगे, टाइटल धारण किया होगा.
देन दे विल हैव ग्रोन अप एंड टेकन द टाइटल.
तो जो बच्चे समझू है वो समझे.
सो द चिल्ड्रन हु आर इंटेलिजेंट विल अंडरस्टैंड.
जो समझू बच्चे हैं वो ही सचिव में मालिक बनेंगे.
Only those who are intelligent children will become masters in the golden age.
देवताएं कब पति दुनिया में पैर नहीं रख सकते.
Deities can never step into the sinful world.
श्री कृष्ण वो तो वैकुंठ का प्रश्न है, प्रिंस है।
श्री कृष्ण इज अ प्रिंस ऑफ वैकुंठ मीनिंग हेवन।
वो वैकुंठ का प्रिंस है।
ही इज द प्रिंस ऑफ वैकुंठ।
सुधरा हुआ मनुष्य है।
ही इज अ रिफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग।
सुधरे हुए मनुष्य को ही कहा जाता देवता।
ओनली द रिफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड डीटीज।
और बिगड़े हुए मनुष्य को कहा जाता है राक्षस।
एंड अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड डीमंस।
कृष्ण को देवी देवता सनातन धर्म का कहेंगे।
कृष्ण विल बी सेड टू बिलोंग टू द एंशियंट डीटी रिलीजन।
वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर वो तो सुख संपत्ति में रहते ही है।
एक्चुअली द डीटीज ब्रह्मा विष्णु शंकर रिसाइड इन द सटल वर्ल्ड एनी वे।
यहाँ मनुष्य रहते हैं।
ह्यूमन बीइंग्स लिव हियर।
मनुष्य को सुख संपत्ति वासी देवता नहीं कह सकते क्या?
अ ह्यूमन बीइंग कैनॉट बी कॉल्ड अ डीटी रिसाइडिंग इन द सटल वर्ल्ड। वॉट?
जो मनुष्य है जिसको मन है।
द वन हु इज अ ह्यूमन बीइंग हु हैज अ माइंड मन।
मननाथ मनुष्य।
इट इज सेड मननाथ मनुष्य मीनिंग द वन हु थिंक्स एंड जर्न्स इज कॉल्ड अ ह्यूमन बीइंग।
जो मनन चिंतन कर सकता है लेकिन लेकिन जो मनन चिंतन करना चाहिए वो करता नहीं।
द वन हु कैन थिंक एंड चर्न बट ही डज नॉट थिंक एंड चर्न वॉट ही शुड।
किस बात का मनन चिंतन?
थिंकिंग एंड चर्निंग वॉट?
मननाथ मनुष्य मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है तो उसको मनन चिंतन मंथन सात्विक करना चाहिए ना?
इट इज सेड मननाथ मनुष्य मनुष्य मीनिंग ह्यूमन बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ मनु सो ही मस्ट थिंक एंड चर्न इन अ सात्विक मैनर मस्टन्ट ही।
कौन सा सात्विक?
व्हाट सात्विक थिंकिंग एंड चर्निंग?
जो आत्मा है उस आत्मा और परमात्मा का मनन चिंतन करना चाहिए।
ही मस्ट थिंक एंड चर्न अबाउट द सोल एंड द सुप्रीम सोल।
लेकिन आत्मा और परमात्मा के मनन चिंतन मंथन से परे।
बट फार फ्रॉम द थिंकिंग एंड चर्निंग अबाउट द सोल एंड द सुप्रीम सोल
मनुष्य आत्मा आज एटम का मनन चिंतन मंथन कर रही है।
द ह्यूमन सोल इज थिंकिंग एंड चर्निंग अबाउट द एटम।
एटम बम बना रही है।
इट इज मेकिंग एटम बॉम्ब्स।
तो मनुष्य हुई या राक्षस हुई?
सो इज इट अ ह्यूमन बीइंग और अ डीमन?
राक्षस तो अपने घर में आग लगा लेता है।
अ डीमन पुट्स फायर टू हिज ओन हाउस।
किसी के अंदर भूत प्रवेश होता है तो क्या करता है?
व्हेन अ गोस्ट एंटर्स समवन व्हाट डज ही डू?
अपने घर को ही तहस नहस कर देता है।
ही रुइंस हिज वेरी हाउस।
तो बताया?
सो इट वॉज सेड
मनुष्य को सूक्ष्म पतन वासी देवता नहीं कह सकते।
A human being cannot be called a deity residing in the subtle world.
जो सूक्ष्म पतनवासी देवता मनुष्य बन जाएगा वो क्या बन जाएगा?
What will the human being who becomes a deity, a resident residing in the subtle world become?
Farishta.
A farishta meaning angel.
क्या?
What?
Farishta का मतलब जिसका इस फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न रहे।
Farishta means the one who doesn't have any relationship with those living on this earthly world.
माने देह और देह के संबंधियों के बारे में कोई चिंतन न करे।
It means that he shouldn't think about the body and the bodily relationships.
क्या चिंतन करे?
What should he think?
आत्मा का चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे, इस सृष्टि का कल्याण कैसे हो, इस बात का चिंतन करे।
He should think about the soul, the supreme soul. He should think about how to bring benefit for the world.
वो है फरिश्ता।
He is a farishta.
दूसरे धर्मों में भी फरिश्ताएं गाई जाती हैं।
The farishta are definitely famous in the other religions.
भारतवर्ष में फरिश्ताएं नहीं गाए जाते।
The farishta are not famous in India.
देवताओं की पूजा होती है।
Deities are worshipped.
जो फरिश्ताओं की भी स्टेज से ऊंचा उठ जाता है।
It is a stage higher than the stage of even the farishta.
फरिश्ता मन चिंतन मंथन करने वाला है संसार के कल्याण के लिए।
अ फरिश्ता थिंक्स एंड चर्न्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड।
इसलिए उसको फरिश्ता कहा जाता है।
दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड फरिश्ता।
लेकिन जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊंचा चला गया।
बट द वन हु वेंट इन अ स्टेज हायर देन द स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड चर्निंग
एकदम निराकारी स्टेज में चला जाता है वो देवतुल्य हो जाता है।
The one who goes in a complete incorporeal stage becomes equal to the deities.
जिसकी अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर जीत हो जाती है।
The one who gains victory over all his इंद्रिया।
तो बोला मनुष्य को सूक्ष्म मतलबवासी देवता नहीं कह सकते.
सो इट वॉज सेड ह्यूमन बींग्स के नॉट बी कॉल्ड डीटीज द रेजिडेंट्स ऑफ द सटल वर्ल्ड.
ब्रह्मा के लिए कहा जाता है ब्रह्मा देवता नम.
इट इज सेड फॉर ब्रह्मा ब्रह्मा देवताय नम मीनिंग आई बाउ टू यू डीटी ब्रह्मा.
विष्णु देवताय नम कहते तो है ना.
इट इज सेड विष्णु देवताय नम इजंट इट.
देवी देवताय नम
देवी देवताय नम मीनिंग आई बाउ टू डीटीज.
श्री लक्ष्मी देवी नम श्री कृष्ण देवताय नम.
श्री लक्ष्मी देवी नम मीनिंग आई बाउ टू देवी श्री लक्ष्मी. देवी मीन्स फीमेल डीटी. श्री कृष्ण देवता नम मीनिंग आई बाउ टू श्री कृष्ण द डीटी.
मनुष्य को 84 जन्म लेने पड़ते हैं.
द ह्यूमन बींग्स अलोन हैव टू हैव 84 बर्थ्स.
अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम असुल देवता धर्म के थे.
नाउ यू चिल्ड्रन नो सर्टनली वी बिलोंग टू द ट्रू डीटी रिलीजन.
अभी हम दूसरों को दुख देने वाले राक्षस बन पड़े.
नाउ वी हैव बिकम डीमंस हु गिव सोरो टू अदर्स.
कोई दिन ऐसा जाता है सुबह से शाम तक.
इज देर एनी डे विच पासिस दिस वे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट.
जो हम मन वचन और कर्म मन से मन के संकल्पों से वाचा की भाषा से और कर्मेंद्रियों के कर्म से कभी किसी को धोखा न देते हो.
When we don't deceive anyone through the mind, speech and actions, through the mind, through the thoughts of the mind, through the language of speech and through the actions of the karmendriya,
dukh na dete ho.
Is there any day when you don't give sorrow to anyone?
Tang na karte ho, athwa khud tang na hote ho.
When you don't trouble anyone or you yourself don't get troubled?
Jo na dusron ko tang karta hai.
The one who neither troubles others,
न दूसरों से तंग होता है उसके लिए गीता में बोला है.
Nor does he get troubled by others, it is said in the Gita for such ones.
यसमान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः.
यसमान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः. Meaning, the one who neither annoys the world, nor does he get annoyed by the world.
ज्ञान सारा वही है गीता का.
The entire knowledge is of the same Gita.
जो संसार को उद्वेग पैदा करने के निमित्त नहीं बनता.
The one who doesn't become an instrument to annoy the world.
और जो संसार के लोगों से उद्वेगित नहीं होता.
And the one who doesn't become annoyed by the people of the world.
माने खुद दुखी नहीं होता और दूसरों को दुख देता भी नहीं.
That means he neither becomes sorrowful himself. Nor does he give sorrow to others.
Baba bhi humko kya sikhate hain?
What does Baba also teach us?
Kaisi state dharan karni hai?
What kind of a state should we attain?
Na dukh lena hai aur na dukh dena hai.
Neither should we take sorrow nor should we give sorrow.
To tum bachche jante ho hamara dharma bahut sukh dene wala hai.
So you children know that your religion gives a lot of happiness.
Yeah.
What?
इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक का जो धर्म है वो मानवीय धर्म है. मनुष्य के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म है.
द रिलीजन एस्टेब्लिश्ड बाय इब्राहिम बुद्धा क्राइस्ट गुरु नानक आर ह्यूमन रिलीजन एस्टेब्लिश्ड बाय ह्यूमन बींग्स.
लेकिन हमारा जो धर्म है जो निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर स्थापन करते हैं.
बट योर रिलीजन विच द इनकॉर्पोरियल सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल एस्टेब्लिशेज आफ्टर कमिंग टू दिस वर्ल्ड
वो बहुत सुख देने वाला है.
गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस.
इसलिए अपने इस धर्म की स्थापना करने के लिए अगर प्राण भी देना पड़े.
दैट इज वाई इवन इफ वी हैव टू सैक्रिफाइस अवर लाइफ टू एस्टेब्लिश दिस रिलीजन ऑफ अवर्स
तो खुशी खुशी प्राण अर्पण कर देना चाहिए.
वी मस्ट सैक्रिफाइस इट हैप्पीली.
भागने की बात नहीं है.
देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रनिंग अवे.
नहीं तो क्या किया बौद्धियों ने.
अदरवाइज What did the Buddhists do?
मुसलमानों ने जहाँ तलवार उठाई उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया.
Whenever the Muslims raised their swords, they accepted the Muslim religion.
क्या
What?
बाप कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः.
The father says, स्वधर्मे निधनम श्रेयः.
अपने धर्म में मर जाना अच्छा है.
It is better to die in one's own religion.
दूसरे के धर्म में कन्वर्ट होंगे तो बहुत दुख सहन करने पड़े.
If you convert to others' religion, you will have to tolerate a lot of sorrow.
दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने वाले दास दासी बना करके रखे.
Those who convert you to their religion will keep you as servants and maids.
क्या?
What?
सबते सेवक धर्म कठोरा. दास दासी का धर्म जो है वो सबसे कठोर होता है.
सबते सेवक धर्म कठोरा. The duty of servants and maids is the hardest.
बहुत दुख झेलने पड़ते हैं.
They have to suffer a lot of sorrow.
तो ये कोई कहने सके, ये कोई कहने सके कि हम इस धर्म में क्यों आ गए.
So no one can say why have we come to this religion.
हम देवी देवता सनातन धर्म में क्यों नहीं हुए.
Why weren't we in the ancient deity religion.
क्यों नहीं कह सके.
Why can't they say so.
बिच्छू कभी कहेगा कि हमें डंक मारना अच्छा नहीं लगता.
Will a scorpion ever say, I do not like to sting?
है? उसका तो धर्म है.
It is his job.
वो कोमल देखेगा तो डंक मार देगा.
If he finds something soft, it will sting it.
तो जो जिस धर्म का है उसको वो अपना धर्म प्यारा लगता है.
So, whoever belongs to whichever religion, he likes that religion.
अपनी ही धारणा में वो खुश रहता है.
He remains happy in his beliefs, meaning dharna.
तो इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि हम उस धर्म में क्यों नहीं हुए.
This is why no one can say, why weren't I in that religion?
अरे ये तो जानते हो ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म आदि में था. क्या?
अरे you do know that the ancient deity religion was in the beginning, don't you? What?
इब्राहिम पुत्र क्राइस्ट से पहले धर्म था कि नहीं था?
वॉज देर अ रिलीजन बिफोर इब्राहिम बुद्धा क्राइस्ट और नॉट.
इस्लाम धर्म है, क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म है, बुद्ध धर्म, इनसे पहले इस धरती पर धर्म था कि नहीं था?
वॉज देर एनी रिलीजन इन दिस वर्ल्ड प्रायर टू इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म और नॉट.
ये मनुष्यों की हिस्ट्री जब से है तब से ये मनुष्यों के धर्म स्थापन हुए.
The human religions were established ever since the history of human beings is available.
उससे पहले भी सृष्टि पर धर्म था.
There was a religion in the world even before that.
और वो वही धर्म था जो परमात्मा ने आकर के खुद स्थापन किया था.
And it was the same religion that the supreme soul established after coming.
वो मानवीय धर्म नहीं था. क्या?
It was not a human religion. What?
मनुष्यों के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म नहीं था.
इट वॉज नॉट अ रिलीजन एस्टेब्लिश्ड बाई ह्यूमन बींग्स.
स्वयं परमात्मा ने उस धर्म की स्थापना आकर के की थी.
द सुप्रीम सोल हिमसेल्फ केम एंड एस्टेब्लिश्ड दैट रिलीजन.
बाकी सब धर्म बाद में नंबरवार आते. कब आते हैं?
द रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स कम लेटर नंबरवार, मीनिंग वन आफ्टर द अदर. व्हेन डू दे कम?
जब भी मनुष्यों के द्वारा फैलाए हुए धर्म आते हैं तब से इस सृष्टि पर द्वैत चालू हो जाता है.
ड्यूअलिज्म कमेंसेस इन दिस वर्ल्ड व्हेन द रिलीजन्स प्रोपगेटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स कम.
द्वैत माने दो दो बातें शुरू हो जाती.
व्हाट डज ड्यूअलिज्म मीन? टू थिंग्स बिगिन.
जब दो बातें शुरू हो जाएंगी तो दो प्रकार की धारणाएं हो जाएंगी, दो दो धर्म हो जाएंगे, दो दो राज्य हो जाएंगे, मतें बहुत सी हो जाएंगी और फिर सब आपस में टकरा.
When two things begin, there will be two kinds of beliefs and practices. There will be two religions, two kingdoms, many opinions, and then everyone will clash with each other.
कोई नरक की सृष्टि बन जाती.
It becomes the same hellish world.
तो मानवीय धर्म नरक बनाते.
So human religions create hell.
और ईश्वर जो धर्म स्थापन करता है वो स्वर्ग बनाते.
And the religion established by God creates heaven.
तुम बच्चे इस बात को समझा सकते हो? क्या बात?
यू चिल्ड्रन कैन एक्सप्लेन दिस. वॉट?
कि आदि में सिर्फ एक ही धर्म था.
दैट देर वॉज ओनली वन रिलीजन इन द बिगिनिंग.
और सब धर्म वाले उस आदि पिता को मानते भी है.
एंड पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द रिलीजन्स ऑल्सो बिलीव इन दैट फर्स्ट फादर.
क्या?
वॉट?
क्रिश्चियन की बाइबल में भी है एडम और ईव.
Adam and Eve are mentioned in the Bible of the Christians.
सृष्टि के आदि पिता थे।
देयर वॉज द फर्स्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड।
मुसलमानों की कुरान में भी है, एंजिल में भी है, क्या?
ही इज मेंशनड इन द मुस्लिम्स कुरान एंजल एज वेल। एंजल मीन्स रिलीजियस बुक ऑफ द इस्लाम। वॉट?
आदम और हवा का गायन है।
आदम एंड हवा आर फेमस।
वो भी सृष्टि के आदि करने वाले को जानते।
दे ऑल्सो नो अबाउट दोज हु बिगिन द वर्ल्ड।
तो जो सृष्टि को आदि करने वाला था उसके बारे में जितनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री भारतीय साहित्य में मिलती है उतनी और किसी धर्म ग्रंथों में नहीं मिलती।
सो द लेंथी हिस्ट्री दैट इज फाउंड इन द इंडियन लिटरेचर अबाउट द वन हु बिगन द वर्ल्ड इज नॉट फाउंड इन एनी अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स।
तो तुम बच्चे ये बातें समझा सकते हो, ये अनादि बना बनाया खेल है।
सो यू चिल्ड्रन कैन एक्सप्लेन दीज थिंग्स, दिस इज एन इटर्नल प्रीऑर्डेंड प्ले।
इसमें फिर से सतयुग होगा।
देयर विल बी द गोल्डन एज इन दिस अगेन।
क्या?
वॉट?
ये ऐसा अनादि बनाया हुआ सृष्टि रूपी खेल है।
दिस इज सच एन इटर्नल प्रीऑर्डेंड प्ले ऑफ द वर्ल्ड।
सृष्टि अनादि है, इसकी कभी आदि नहीं होती, इसका कभी अंत नहीं होता।
द वर्ल्ड इज इटर्नल, इट नेवर हैज एनी बिगिनिंग, इट नेवर एंड्स।
ये चार युगों का चक्र यूं ही फिरता रहता है।
दिस साइकिल ऑफ फोर एजेस कीप्स रोटेटिंग एज इट इज।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
द गोल्डन एज, द सिल्वर एज, द कॉपर एज एंड द आयरन एज।
जैसे मनुष्य आत्मा जन्म लेती है, बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है।
Just like human souls are born, there is childhood, youth, old age, and then there is death. Then there is birth again.
तो जैसे ये चक्र चलता रहता है, वैसे ही सृष्टि का भी चक्र चलता रहता है।
So the way this cycle goes on, similarly the cycle of this world also goes on.
तो इसमें फिर से सतयुग होगा। भारत में ही सतयुग होता है।
There will be the golden age in it again. There is the golden age in India. भारत इटसेल्फ।
सबसे ज्यादा झूठ खंड कौन सा देश बनता है?
विच कंट्री बिकम्स द लैंड ऑफ फॉल्सहुड द मोस्ट?
भारतीय झूठ खंड।
इंडिया इटसेल्फ बिकम्स द लैंड ऑफ फॉल्सहुड।
अभी विदेशी लोग भारत में आते हैं।
नाउ व्हेन द फॉरेनर्स कम टू इंडिया
तो तुरंत भागने की कोशिश करते हैं यहाँ से। क्यों?
दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम हियर इमीडिएटली। व्हाई?
यहाँ जितना झूठापन चोर डकैत यहाँ देखने में आते हैं उतना उन्हें संसार में और कहीं देखने में नहीं आते।
इट इज बिकॉज द एक्सटेंट टू विच दे सी फॉल्सहुड थीव्स एंड रॉबर्स हियर दे डोंट सी देम इन दैट नंबर एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड।
दूर तक।
देर आर चीट्स।
तो भारत में ही स्वर्ग होता है, भारत में ही रौरव नरक होता है।
सो देर इज हेवन एज वेल एज टेरिबल हेल इन इंडिया अलोन।
भारतीय अविनाशी खंड है।
इंडिया इटसेल्फ इज द इम्पेरिशेबल लैंड।
और धर्मखंड विनाशी है।
द रेस्ट ऑफ द रिलीजियस लैंड्स आर पेरिशेबल।
चाहे क्रिश्चियन धर्मखंड हो,
वेदर इट इज द क्रिश्चियन रिलीजियस लैंड्स,
चाहे अरेबियन से मुसलमान धर्मखंड हो,
वेदर इट इज द अरेबियन और द मुस्लिम रिलीजियस लैंड्स,
चाहे बौद्ध धर्मखंड तिब्बत, चीन, जापान हो,
वेदर इट इज द बुद्धिस्ट रिलीजियस लैंड्स लाइक तिब्बत, चाइना, जापान,
वो सब विनाशी।
ऑल आर पेरिशेबल।
प्रूफ?
What is the proof?
क्या प्रूफ है?
What is the proof?
2500 वर्ष की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री इस बात का प्रूफ है।
The history of 2500 years is a proof for this.
ऑस्ट्रेलिया आज से 300 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान नहीं था।
There was no name or sign of Australia in the intellect of the human beings 300 years ago.
आज से 500 साल पहले अमेरिका का मनुष्य के मस्तिष्क में नाम निशान नहीं था।
There was no name or sign of America in the intellect of the human beings 500 years ago.
पहली बार कोलंबस ने उसको इजाद किया।
कोलंबस डिस्कवर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम।
नाव लेकर अचानक अनकाशी से पहुंच गया।
He reached there suddenly, unexpectedly on a boat.
देखा तो वहाँ एंग्लो इंडियंस लोग रहते थे।
When he saw the place, he found that Anglo Indians meaning red Indians, lived there.
माने वो लोग भी कहाँ के रहने वाले थे?
It means, to which place did they also belong?
India से भटक करके कहीं जहाज में पहुँच गए, तो वहीं के वहीं वासी हो गए, उन्हें वापस आने का रास्ता भूल गए.
They lost their way from India while traveling on a ship and reached somewhere and became the residents of that very place. They forgot the route to return.
तो सबसे पुराना देश अविनाशी खंड है भारत खंड.
So the oldest country, the imperishable land, is the land of India.
यहाँ देवताएं भी होते हैं.
The deities also exist here.
और वही देवताएं अनेक जन्म लेते लेते जब उनकी आत्मा रूपी बीज कई बार इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में आता है.
And when the seed-like soul of the same deities comes in the cycle of birth and death many times in this world,
तो जन्म मरण के चक्र को प्राप्त करते करते एकदम नीचे आत्मा गिर जाती.
Then while going through that cycle, the soul degrades completely.
विदेशियों की आत्मा इतनी नीचे नहीं गिरती.
The souls of the foreigners do not degrade that much.
दूसरे धर्म खंड वालों की आत्मा इतनी नीचे नहीं गिरती जितना भारतवासी नीचे गिरते.
The souls belonging to the other religious lands do not fall as much as the Indians.
ये देवताएं भी थे और आखिरी जन्म में आकर के दैत्य जैसे बन जाते.
They were deities and in the last birth they become like demons.
तो बाप का जन्म भी यहाँ होता है.
So the birth of the father also takes place here itself.
Supreme soul बाप भी इसी भूमि पर आता है.
The Supreme Soul Father also comes on this land alone.
जो सबसे गिरा हुआ है वो सबसे ज्यादा गिरे हुए को उठाने वाला एक परमपिता परमात्मा वो भी भारत में आता है.
The one Supreme Father, Supreme Soul, who uplifts the one who has fallen the most, also comes in India.
उनका दिव्य जन्म है.
His birth is divine.
साधारण जन्म नहीं है.
It is not ordinary.
वो नरक को स्वर्ग बनाने वाला है.
He is the one who transforms hell into heaven.
अभी जो भारत है पहले स्वर्ग था सतयुग में.
India, which was heaven in the golden age.
नाम क्या था उसका?
What was its name?
सतयुग.
सतयुग meaning the golden age, literally the age of truth.
वही भारत अभी नरक बन पड़ा है.
That Bharat itself has become hell now.
स्वर्ग को याद तो जरूर करते हैं.
People certainly remember heaven.
क्या?
What?
सभी धर्म वाले स्वर्ग को, जन्नत को, पैराडाइज को याद करते हैं या नहीं करते?
Do people belonging to all the religions remember heaven, जन्नत, पैराडाइज or not?
है? याद करते हैं ना?
They do remember, don't they?
याद करते हैं माने उनकी आत्मा में वो स्वर्ग भोगने के संस्कार हैं.
If they remember, it means that their soul contains the संस्कार्स of enjoying heaven.
आत्मा ने चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो उन्होंने जरूर स्वर्ग भोगा.
The souls, whether they are the Christians, the Muslims, they have definitely experienced heaven.
वो स्वर्ग अब इस सृष्टि पर फिर आने वाला है.
That heaven is going to come to this world again.
नरक को स्वर्ग बनाने वाला वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है.
The Supreme Father, Supreme Soul, who transforms hell into heaven, has come in this world.
तो कब आते हैं? ये तुम बच्चों को नॉलेज मिली है.
You children have received the knowledge about when he arrives.
दुनिया इन बातों को नहीं जानती.
The world doesn't know about this.
हमें तो शक की कोई बात नहीं.
There is nothing to doubt for us.
कि ये बात ऐसे क्यों है?
Why it is like this?
हमें कोई बात में शक अनिश्चय पैदा नहीं होता.
We do not have any doubt, faithlessness in anything.
अगर कोई उल्टे सुलटे प्रश्न करते हैं तो कहा जाता है
If anyone asks any improper questions, they are told
कि पहले बाप और वर्षे को याद करो.
First, remember the father and his inheritance.
क्या?
What?
ढेर सारे प्रश्नों की डिटेल में उनको ले जाने की जरूरत नहीं है.
There is no need to give them the detail, meaning explanation of numerous questions.
पहले क्या करो?
What should you do first?
पहले अपने बाप को पहचानो और जो बाप सुख शांति का वर्षा देने वाला है, बेहद का बाप, उस वर्षे को पहचान।
यू शुड टेल देम फर्स्ट रिकॉग्नाइज योर फादर एंड रिकॉग्नाइज द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस दैट द अनलिमिटेड फादर इज गोइंग टू गिव।
अगर इन दो बातों को पहचान लिया तो तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान स्वतः ही हो जाए।
If you recognize these two things, all your queries will be automatically answered. Om Shanti.